हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। गुजरात के एयरपोर्ट पर एक लड़की आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो तेज कदमों से चलती हुई आ रही थी। वो टैक्सी ढूंढ रही थी कि और कोई नहीं बल्कि राविया की कजिन सिस्टर इमामी थी। सुनील चटवानी से राविया को बेचकर वो पैसे लेना चाहती थी, पर मिस्टर चटवानी ने जब उन्हें पैसे नहीं दिए तब इमामी को पता चला कि राविया एयरपोर्ट पर किसी लड़के के साथ थी और उसे लड़के को अपना पति बता रही थी। अब इमामी को उसके बारे में सब कुछ पता लगाना था। आखिर ऐसा कौन सा लड़का था जिसने राविया से शादी की है, और क्या राविया अपनी लाइफ में सेटल है? और अगर वो झूठ बोल रही है तो वो मिस्टर चटवानी से आज भी उसकी शादी करवा सकती है, इसलिए दोबारा इंडिया आ गई थी। अब कैसे भी करके बस उसे पता लगाना था कि आखिर राविया कहाँ रहती है। तो वहीं इमामी, जिसे ढूंढ रही थी हमारी प्यारी राविया, अभी दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े अपनी डेस्क पर बैठी थी। तभी अचानक उसके सामने एक कॉफी मंगाई गई, जिसे देखकर राविया ने उस इंसान को देखा जो उसके लिए कॉफी लेकर आया था, कि और कोई नहीं बल्कि उसका पति परमेश्वर अनंत था। उसे देखकर राविया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपको नहीं लगता काम के वक्त आपको यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए? अनंत उसके सामने टेबल पर बैठते हुए उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, बीवी कितना गुस्सा करती हो तुम। आई नो हमें डेडिकेटेड वर्क करना है, लेकिन उसके साथ साथ खुद का ख्याल भी रखना है। तुम्हें पता है बहुत जल्दी फरवरी के लव वीक स्टार्ट होने वाले हैं, और मैं तुम्हें हर दिन कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा। कितने सारे प्लान बनाने हैं मुझे, और तुम हो कि मुझे यहीं सिर्फ ऑफिस के काम में लगाकर रखना चाहती हो। दिस इज सो बैड, और मैं ये नहीं करने वाला हूँ, राविया ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। छोटे बच्चे हो क्या आप? वो सब कुछ स्कूल कॉलेज के बच्चों को सूट करता है, आपको नहीं। जितने प्रोजेक्ट मिले हैं उनको अगर हम टाइम पर खत्म नहीं करेंगे तो आगे से हमें कोई प्रोजेक्ट लाकर नहीं देगा, और हमें अपने एम्प्लॉयज़ भी बढ़ाने हैं ना। अब तक सिर्फ आप एक चौकीदार हायर कर पाए हैं और आपको फिर भी ये बकवास चीज़ करनी है, सीरियसली? अनंत ने एक हाथ अपने गाल पर रखते हुए गौर से राविया के चेहरे को देखकर कहा, तो क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए एफर्ट्स करे और फिर लोग तुम्हें देखकर कहें कि किस्मत कितनी अच्छी है, इसे कितना अच्छा पति मिला है जो इसके लिए सब कुछ करता है। तुमने मेरी न्यू ईयर भी ऐसे ही खराब कर दी थी, मैं कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाया, और अभी हम बहुत अच्छे पॉइंट पर हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, राविया ने कॉफी का एक घूंट भरते हुए कहा। मेरा पति ऑलरेडी बहुत अच्छा है, और आप मेरे लिए जो करते हैं वो काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मुझे, निब्बी नहीं बनाना है। उसकी इस बात पर अनंत को हंसी आ गई, उसने भी कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, लेकिन मुझे तो निब्बाना बनाना है, और अगर मैं निब्बाना बनूंगा तब तुम्हें निब्बी भी बनना पड़ेगा, और इसके आगे अब कोई बहस नहीं होगी। अगर तुम्हें लगता है काम ज्यादा जरूरी है तो तुम करती रहो, मैं तुम्हें काम करने से थोड़ी रोक रहा हूँ। मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बोल देना, और रही बात एम्प्लॉयज़ की, तो अभी हमें किसी की ज्यादा जरूरत नहीं है। जब ज्यादा जरूरत होगी तब हम हायर कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ देर तक अनंत और राविया ऐसे ही बात करते रहे। उनके दिन कुछ इस तरीके से ही गुजर रहे थे। राविया हमेशा अनंत को काम के लिए सीरियस होने के लिए डांटती रहती, तो वहीं अनंत उससे प्यार भरी बातें करके उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करता रहता। अब अनंत को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, उसका काम भी अच्छा चल रहा था, और उसकी लाइफ पार्टनर भी दुनिया में सबसे बेस्ट पार्टनर बन गई थी, जिससे वो अपना हर सुख दुख शेयर कर सकता था, जो कभी उसे हर्ट करने की कोशिश नहीं करती थी, ज्यादा डिमांड भी नहीं करती थी, जिनके लिए अनंत को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो वहीं अस्पताल में जैसे ही वेदांत का काम हुआ था, वो डॉक्टर को थैंक यू बोलकर उनके केबिन से बाहर आता है। ठीक उसी वक्त रूही को भी डिस्चार्ज किया गया था, और पार्थ को यहाँ से जाने कितनी जल्दी थी कि वो अस्पताल की फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं करना चाहता था। उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले जाने लगा, जिससे रूही ने लगभग रोते हुए कहा, अंकल तुम कितने ज्यादा बेरहम हो, अभी अभी मैं हॉस्पिटल बेड से उठकर आई हूँ, कम से कम थोड़ी देर तो मुझे आराम करने दो। रूही की आवाज सुनते ही वेदांत उसे तुरंत पहचान गया था। पलक झपकते हुए पार्थ और रूही के सामने गया, और फिर हैरानी से रूही के चेहरे को देखते हुए बोला, रूही बेटा तुम यहाँ, सब कुछ ठीक है ना? वेदांत को देखते ही रूही की आंखों में चमक आ गई। उसने पार्थ से अपना हाथ छुड़वाया और अगले ही पल वेदांत के गले लगते हुए बोली, वेदांत भाई आप, मेरे पेट में ना बहुत तेज दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने अपने हाथ का बनाया खाना खा लिया था। आपको तो पता ही है मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, इसीलिए मुझे ना हॉस्पिटल आना पड़ा। वेदांत ने रूही के बाल सहलाते हुए कहा, वो तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारे साथ कौन है, किसके साथ आई हो तुम यहाँ,
क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ये लड़का? वेदांत की ये बात सुनकर रूही की आंखें फैल गईं, क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास था ही नहीं। क्या वो वेदांत को सीधा ये बता दे कि वो जिसके साथ आई है उसका किडनैपर है, जिसने कितने दिनों से उसे कैदी बनाकर रखा है। पार्थ के चेहरे पर भी परेशानी उतर आई थी। उसने जल्दी से रूही का हाथ पकड़कर उसे वेदांत से अलग करते हुए कहा, हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। पार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। रूही का यूं वेदांत के गले लगना उसे बहुत ज्यादा पजेसिव हो गया था, और इसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था कि उसने फिलहाल वेदांत को अपनी आवाज सुना दी है, जिसे सुनते ही वेदांत उसे पहचान गया था। अगले ही पल वेदांत ने एक झटके से पार्थ का मास्क उतारते हुए कहा, पार्थ तुम यहां कब आए और हम लोगों को बताया क्यों नहीं? पार्थ का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसके पास वेदांत की बातों का कोई जवाब नहीं था, पर उसके चेहरे को देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि फिलहाल वो क्या सोच रहा है, क्योंकि उसका चेहरा हर इमोशन पर अलग अलग एक्सप्रेशन देता है। तो वहीं लोही को पता नहीं क्यों पर अपने किडनैपर पर भी दया आ रही थी। उसे पता था कि पार्थ नहीं चाहता वेदांत को सब कुछ पता चल जाए, इसलिए उसने पार्थ के झूठ को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो मिस्टर अंकल बोल रहे थे कि हम दोनों के रिश्ते को आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए मास्क लगाकर घूम रहा है। वेदांत ने आंखें छोटी करके कहा, अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो क्यों बोल रही हो, नाम से बुलाओ। रूही ने खुश होते हुए कहा, भाई आप क्या बात कर रहे हो, जरा देखकर बताओ, ऐसा नहीं लगता कि इंसान मेरा अंकल है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। अगर इसके साथ मैं कॉलेज जाऊंगी ना तो सब लोग इसे मेरा गार्जियन समझ लेंगे, बस इसीलिए मैं इसे मिस्टर अंकल बुलाती हूँ। इतना बोलकर वो खुद में ही हंसने लगी। तो वहीं पार्थ ने रूही के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिसे महसूस कर रूही की हंसी पल भर में गायब हो गई, और उसने डरते हुए पार्थ के चेहरे को देखा और फिर मन ही मन बोली, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ऊपर से मेरा ही हाथ कसकर पकड़ रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। वेदांत कुछ पल उन दोनों को देखता रहा और फिर जल्दी से पार्थ को अपने गले लगाते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और डरने की जरूरत नहीं है। अब तो ऑलरेडी हमारे परिवार में एक लव मैरिज हो चुकी है, तो अब सब कुछ अलाउड है, और तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने से। अभी चलो मेरे साथ, तुम लोगों को देखकर घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे, और ऊपर से रूही को सब जानते हैं, इसकी जितनी प्यारी बच्ची मैं आज तक नहीं देखी, इसके लिए कौन मना करेगा भला।
वेदांत की बात सुनकर पार्थ ने आंखें बड़ी धरते हुए कहा, नहीं मुझे घर नहीं जाना है, वो पापा। बोलते बोलते ही पार्थ रुक गया। वो अपने पापा की सच्चाई वेदांत को नहीं बता सकता था। तो वहीं वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अंकल की फिक्र मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगा, तुम फिलहाल चलो मेरे साथ। ना चाहते हुए भी रूही और पार्थ को वेदांत के साथ निमानी हाउस जाना पड़ा।